शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ दिन से बाबा की मुरली में साकार बाबा ने प्रदर्शनी के बारे में, प्रदर्शनी का नाम क्या होना चाहिए, गेटवे टू हेवन, मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार, तो आज का टॉपिक ब्राह्मण जीवन की संपन्नता और संपूर्णता की द्वार तक पहुंचे, और अगर की हाथ में नहीं है तो ब्राह्मण जीवन की संपन्नता और संपूर्णता और सफलता की चाबी कौन सी है। ताकि उस चाबी लगाते ही, की लगाते ही खजानों की खान खुल जावे, सबसे बड़े सुंदर बात यह है कि जो सतयुगी खजाने प्राप्त करने हैं अथवा स्टेज को प्राप्त करना है, उसका ट्रेलर, उसका पहले टेस्ट अथवा एक्सपीरियंस संगम पर ही होता है। मुक्ति में जाके हमको मालूम नहीं कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति में जाके कुछ स्मृति नहीं रहेगी कि हम जीवन मुक्त हैं। तो प्राप्ति का सुख, किसी भी चीज की प्राप्ति का आनंद, जिस समय हमारे पास जो वस्तु नहीं है उसकी थोड़ी झलक भी अथवा थोड़ी प्राप्ति भी होती है, तो उत्सुकता, उत्साह, उमंग, पुरुषार्थ बढ़ता है। तो बाबा हम बच्चों को रोज रोज लक्ष्य की स्मृति दिलाते हैं, न केवल स्मृति दिलाते हैं, स्मृति के साथ साथ साक्षात्कार भी कराते हैं। और ऐसा नहीं कि हमको अकेले चलना है, हमको ले जाने वाला गाइड, गेटवे टू पैराडाइज, मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने वाला लिबरेटर, और ओपनिंग एंट्री करने वाला फर्स्ट प्रिंस, हम अकेले नहीं जा रहे। हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, भक्ति में ढूंढते हैं। अभी हमको अपनी डेस्टिनेशन का पता है, परंतु हम सहज पहुंच जाए, इसलिए बाबा कहते हैं सहज प्राप्ति का साधन है, फॉलो करो। तो फॉलो फादर टॉपिक नहीं है, फॉलो फादर एक्चुअली एक प्राप्ति का सहज साधन है, परंतु उसमें की है। जिस स्थिति में निराकार है शिव बाबा और जिस स्व स्थिति में ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को फॉलो करने की बात। जैसे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, गाड़ी को फॉलो करते हैं तो गाड़ी का रंग, गाड़ी का नंबर, खाली रंग की बात नहीं, नंबर की बात भी नहीं, परंतु कौन सी गाड़ी है उसके पर फोकस रहता है। और एम यही रहता है कि जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही है हमारी स्पीड वही हो, नहीं तो बीच में कोई और गाड़ी अगर आ जाती है तो कंफ्यूजन अथवा इनसिक्योरिटी सी महसूस होती है। तो हम ईश्वरीय मार्ग पर सहजते सहज साधन बाबा ने जो दिया है, कोई समझते हैं अभी हम थोड़ी कैसे साकार बाबा को फॉलो करें, साकार बाबा तो अभी है ही नहीं हमारे साथ, हम फॉलो कैसे करें। एक्चुअली फॉलो का अर्थ स्थिति को फॉलो करना है, फॉलो का अर्थ है समझ करके उस अवस्था को प्राप्त करना जिसके लिए बाबा ने जो ये लास्ट अव्यक्त मुरली थोड़ा दिन पहले पढ़ी थी उसमें स्थिति बनाने के लिए, फॉलो फादर का मतलब ही है कि स्व स्थिति बनाए, देय अभिमानी स्थिति बने। स्थिति से अवस्था बनती है और अवस्था जैसी है उसी हिसाब से हमारी स्टेज स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ अथवा सर्व प्राप्ति की व्यवस्था हम ठीक कर सकते हैं, साधन उपलब्ध कर सकते हैं, अपनी इनर प्राप्ति जो कि खान है, आंतरिक शक्तियां उसको इमर्ज कर सकते हैं। तो आज की क्लास है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्योंकि बाबा ने कहा कि निराकार को बाप, दो बाप को फॉलो करो, बाप दादा को फॉलो करो, दोनों फादर को फॉलो करो, और उसमें बाबा ने शब्द यूज किए विदेही बाप आए हैं बच्चों को देही अभिमानी स्थिति में स्थित करने, अशरीरी बाबा आए हैं तो और निराकार बाबा आए हैं, और साकार के लिए भी बोले थे शब्द अव्यक्त अशरीरी फरिश्ता। तो किसी ने पूछा था कि इन तीनों का, यानी शब्द तो मिलते जुलते हैं, बात तो एक ही है, परंतु वास्तव में अगर शब्द भिन्न है तो शब्द का वैसे साधारण रीति से देखें तो एक ही बात लगती है, परंतु जब गहराई में जाते हैं तो उसकी जो पावर है उस शब्द की अथवा अनुभव उस शब्द का है अथवा संदेश जो उस शब्द का है और स्थिति उस शब्द से बनती है वो अलग अलग है। अशरीरी बाबा आए हैं, शरीर का आधार लेकर के, देह का आधार लेकर के, देही अभिमानी स्थिति बनाने। विदेही बाप आए हैं विदेही बनाने। अब अशरीरी, इसको शरीर नहीं है तो अशरीरी और निराकारी, परंतु अंतर है। जब हम शरीर में रहते हुए देह को यूज करते हुए, देह का आधार लेते हुए ये कॉन्शियस रहे मैं करावनहार हूं और देह करणहार है, वो मालिकपन की कॉन्शियस है। परंतु मालिक होते हुए भी विदेही स्थिति अथवा विदेही स्थिति ट्रस्टीपन की कॉन्शियस है। मालिक होते समझ रहे कि मुझे यूज कैसे करना है इस प्रकृति को, अथवा शरीर के कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, तो जो बाबा ने, शिव बाबा है निराकार स्वरूप, और निराकार इटर्नल ओरिजिनल बिंदु स्वरूप है, उसमें आकार या साकार शब्द नहीं है, वो अपना ओरिजिनल और इटर्नल स्वरूप आत्मा का निराकार है, वो अविनाशी है, अनंत है। तो जो इटर्नल और इमॉर्टल एनर्जी है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, और आकार और साकार में परिवर्तन होता है। निराकार में स्टेजेज नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। साकार स्टेज में हम प्रकृति का आधार लेते हुए, प्रकृति के साथ पार्ट प्ले करते हुए, अपनी सतोप्रधान स्टेज, सतो स्टेज, रजो स्टेज, तमो स्टेज प्रकृति के प्रभाव से बदली होती है। तो प्रकृति के प्रभाव से परे रहने के लिए, प्रकृति में आते हुए, शरीर में रहते हुए बॉडीलेसनेस की प्रैक्टिस, अशरीरी रहने की प्रैक्टिस। तो शरीर होते हुए भी शरीर मेरा नहीं है, या मैं मालिक भी हूं, क्रिएटर हूं। बाबा ने जो 3 वीक पहले की मुरली थी उसमें कहा था कि आत्मा मालिक है इस शरीर की, प्रकृति की, अथवा रचता है। ये मेरी रचना है, प्रकृति तुम्हारी रचना है, तुम शरीर को रचते हो, इस हिसाब से मालिक हो। तो शरीर को कैसे रचते हैं? शरीर तो अनादि अविनाशी, प्रकृति अनादि है, परंतु हमारे शरीर की जो शक्ति है, सतयुगी निरोगी कंचन काया हम तैयार करते हैं अभी। निरोगी कंचन काया, लंबी आयु, सुंदरता, ये सब इस समय हम तैयार करते हैं अथवा रच रहे हैं अपनी नई सृष्टि में, नया शरीर, और शरीर में रहते हुए रचते हैं। और परमपिता परमात्मा फिर ऐसा आत्मा का आधार लेते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, साकार तन का आधार लेते हैं। देह में आते हुए भी देह का भान नहीं है, विदेही, देही अभिमानी स्थिति, पर विदेही स्थिति। तो विदेही किसका का अर्थ क्या है? ट्रस्टी। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने शरीर को समर्पण किया, फिर वो मेरा नहीं है, और साथ साथ एक तरफ है ये मेरा शरीर है और मैं मकान मालिक हूं, और ब्रह्म शिव बाबा इसका किराएदार है। ये कई बार साकार बाबा अपने अपने शरीर के लिए भिन्न भिन्न नाम यूज करते हैं, और उसको यूज करने के लिए यानी मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। आपको ये मालूम है कि मैं बाबा कहते हैं मैं लैंड लेडी हूँ, ये बॉम्बे में ब्लू हेवन मकान था तो वहाँ की जो लेडी, बाबा बॉम्बे गए हुए थे तो लिफ्ट में वो जो मकान मालकिन थी उसने कहा आपको मालूम है ये फ्लैट में जिसमें आप रहते हैं आके रहे हैं मैं उसकी लैंड लेडी हूँ। तो बाबा को तो फौरन नशा चढ़ गया, मैं भी लैंड लेडी हूँ, मेरे मकान में मेरे शिव बाबा किराए पर आके रहता है और मुझे भी किराया मिलता है। नशा बाबा को निश्चय किस प्रकार से कि प्राप्ति कितनी होती है, और पर द सेम टाइम ये शरीर मेरा नहीं है, समर्पण है, प्रभु अर्पण है शरीर। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन को लेकर के, शिव बाबा ब्रह्मा के तन का ट्रस्टी है और ब्रह्मा बाबा शिव को समर्पण करके मालिक होते हुए भी उस शरीर का ट्रस्टी है। राजा जनक जैसे विदेह नाम है, राजा जनक को विदेह कहते थे, यानी अर्थ जनक मैंने पिता, तो परमात्मा पिता देह में आते हुए देही अभिमानी है, यानी बिल्कुल क्लियरली ये निश्चय ये अनुभव अथवा स्थिति है कि मैं इस देह को यूज करने वाला निराकार स्वरूप आत्मा हूं, परम आत्मा हूं। और व्यक्त का आधार व्यक्ति होते शिव बाबा, फिर शिव बाबा ने अपने लिए व्यक्त शब्द यूज नहीं किया, अपने लिए विदेह शब्द यूज किया। ब्रह्मा बाबा के लिए व्यक्त आकारी फरिश्ता स्वरूप यूज किया शब्द, शिव बाबा के लिए फरिश्ता शब्द नहीं यूज होता। पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, तो हम ये स्थिति को कैसे फॉलो करें? जो बाबा की स्टेज है देह में रहते हुए इस बॉडी को लेस और लेस, यानी कम, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में बोलते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, कम यूज करो और समझ से यूज करो। तो जैसे कोई भी चीज अपनी नहीं है, पराई है, तो ध्यान से भी यूज करते हैं, रेस्पेक्ट से भी यूज करते हैं, अपनी है तो संभाल से यूज करते हैं, मालिकपन से यूज करते हैं और प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं कि वो ठीक रीति से यूज होवे। तो ये स्थिति की बात है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल चीज को हम मालिक होकर के भी यूज करते हैं, ट्रस्टी होकर के भी यूज करते हैं, किराएदार किराएदार के मकान पर रहता है, पता है कि ये मकान मालिक का मकान है, परंतु फिर भी उसको ठीक ठाक रखने के लिए मेरा घर है, मेरा मकान है। ये नहीं कहते मेरे मालिक मकान के घर में मेरे पास मिलने आ जाना। तो ऐसे हम आत्माएं शरीर में रहते हुए हम अपनी कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, जो हमारी निराकारी स्टेज है, हमको बाबा की श्रीमत मिली है कि तुम अपने को आत्मा समझकर इस शरीर को यूज करो, देही अभिमानी होकर के यूज करो, मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं। तो जिस कॉन्शियस से मैं यूज कर रही हूं, कॉन्शियस माना वो जो क्वालिटी है उस, जैसे निराकारी स्टेज की क्वालिटी क्या है, निराकार, निराकार की स्टेज स्टिल, शांत, संपूर्ण पवित्रता और बीज सब कुछ समेटा हुआ है। तो मैं इस कर्म इंद्रियों को बॉडी में आते हुए बॉडीलेस स्टेज, यानी एक तो लेस यानी कम से कम, जिस समय हम बॉडी कॉन्शियस में है हम बाहर मुखी हैं, ज्यादा यूज करते हैं, बोलते भी ज्यादा हैं, देखते भी अननेसेसरी चीजें हैं, सुनते भी अननेसेसरी अनेक बातें हैं। तो जितना हमको अपनी कर्म इंद्रियों को यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज करते हैं। देह का भान, क्योंकि ये तीन स्टेजेस हैं, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, पर विदेह है, क्योंकि इस देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, इन तीनों पर कंट्रोल करने की चाबी है विदेह, विदेही या देही अभिमानी। अभिमान ले में हम अभिमान अहंकार नहीं, पर मन भी माने, बुद्धि में निश्चय भी हो और ये आत्मिक स्थिति पक्की हो निश्चय के आधार से कि यस, ये भान शरीर का भान अवेयरनेस जो है वो हमको साकार रूप की स्मृति में रखती है। देह भान, तो देह भान नीचे लेके आता है, निराकारी स्टेज सोचते ही हम ऊपर जाते हैं, जैसे सोचा मेरा शरीर, तो शरीर कहने से प्रकृति में आए, नीचे की स्टेज में आए। तो बाबा ने कहा इन दोनों स्टेज को, स्थिति को सामने रखो, देही अभिमानी स्थिति या विदेही स्थिति, विदेह, मैं देह से न्यारी हूं, मैं देह नहीं हूं, बगैर देह हूं, विदाउट देह, विदेह, सेपरेटेड, सेपरेट एनर्जी, जैसे योग वियोग, योग क्या है जुड़ा हुआ, वियोग क्या है बिछड़ा हुआ, सेपरेट। तो देह भान में हम, बेशक हमने समझा कि मैं आत्मा हूं, परंतु जैसे ही भान आया तो मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, उम्र का भान आएगा, देह का आकर्षण आएगा, तो उसमें हमारे अननेसेसरी जो संकल्प मुझे नहीं भी करने, वो संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे। मन जो है वो देह भान में आते इस धरती पर आकर्षण यहां का रहेगा, देह भान से, देह भान से हमारी आइडेंटिटी, जो आत्मा सोल की जो सोल है उसको जैसे कि रस्ट लगना शुरू होता है। ठीक, आत्मा तो चेतन है, की तो आत्मा ही है, पर देह भान में आने से जैसे कि रस्ट लगना शुरू हुआ, तो चाबी जो आत्मिक स्वरूप के गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सत्यता, उसको खोलने में अटक होती है। अभिमान में, अभी मैंने मान लिया मैं फलाना हूं, अभिमान में व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प जल्दी चलते हैं, क्योंकि जो देह के द्वारा मैंने प्राप्त किया अथवा देह के संबंध हैं वो इन्हें जरूर खींचेंगे। देह भान में मेरा अपने पर ध्यान है, देह अभिमान में जो मुझे देह तथा देह के संबंध की प्राप्ति है, संबंध है, उसका अभिमान है, पोजीशन का भी मन है, मेरे शरीर के साथ जो लगी हुई चीजें हैं उससे मैं क्या होती जा रही, दूर होती जा रही, जो प्राप्ति है मेरी उससे कम होती जा रही। तो बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने पहला प्रैक्टिस क्या की, मैं आत्मा हूं, ओम का मंत्र भी मैं आत्मा हूं, ओम का अभ्यास मैं आत्मा हूं, आत्मा स्वरूप में स्थित होते ही एटमॉस्फेयर शांति का हो जाता था, वातावरण एकदम शांत बन जाता था, ओम का मंत्र जपते एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता था, ओम का मंत्र अभ्यास करते जैसे कि सब ध्यान में चले जाते थे, देह भान से अलग हो जाते थे, धरती का आकर्षण कम और जो आत्मिक स्वरूप के आकर्षण है वो ज्यादा। फिर देह के संबंध को न्यारा होने के लिए बाबा ने क्या अभ्यास किया, देह के संबंध से न्यारा होने के लिए बाबा प्रैक्टिस करते थे, यशोदा आत्मा है, पालू आत्मा है, निर्मल शांता दादी का नाम पालू था, पालू आत्मा है, नारायण बाबा का बेटा का नाम आत्मा, यानी उनको शरीर के संबंध को भी, मेरा संबंधी नहीं है वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। तो क्या हुआ, संबंध रिश्ता जिस्म वाला नहीं रहा, जो व्यक्तित्व था अपना व्यक्ति भाव यानी शरीर पुरुष भाव, वो व्यक्ति व्यक्त नहीं रहा, वो जैसे लौकिक को अलौकिक बनाने वाला कार्य हो गया, अलौकिक रिश्ता, इस लोक का रिश्ता नहीं परलोक का रिश्ता है। तो रिश्ता देह का रिश्ता, अपने पहले अपनी देह के साथ अपना रिश्ता चेंज हुआ कि मैं ट्रस्टी हूं, और फिर देह के रिश्तों के साथ रिश्ता बदला कि ये बंधन मुक्त, देह के बंधन से मुक्त, संबंध न खींचे नहीं, संबंध बंधन न बने, तो तन के बंधन से भी मुक्त, मन के बंधन से भी मुक्त, संबंध के बंधन से भी मुक्त, ये बाबा ने अभ्यास किया, धन को भी सफल किया, ट्रस्टी होके रहा। तो बाबा ने जैसे राजा जनक के पास राजाई थी परंतु ट्रस्टी होके रहा, विदेह होके रहा, ऐसे बाबा व्यक्त में रहते अव्यक्त होने का प्रैक्टिस किया, संबंध में होते फरिश्ता यानी जिस्म का रिश्ता नहीं रूहानी रिश्ता। तो जब रूहानी रिश्ता हुआ और ट्रस्टी हो गया मेरा कुछ नहीं, तो फिर मालिक कौन, शिव बाबा, तो बोझ और बंधन खत्म हो गया, बोझ भी नहीं, इतना बड़ा कार्य, विश्व पिता ब्रह्मा शिव बाबा, विश्व का पिता ब्रह्मा बाबा, प्रजा पिता वो भी विश्व का पिता है, विश्वनाथ उस आधार से ही तो बनते हैं, परंतु जितना प्यारा उतना न्यारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली और न्यारापन भी रहा, स्व अभ्यास भी किया और परोपकार भी किया, लक्ष्य बड़ा ऊंचा रखा स्व स्थिति का, फरिश्ते स्वरूप का आह्वान किया, देह भान से न्यारा होने की प्रैक्टिस की और फरिश्ते को यहां वतन में लाने का अभ्यास किया। तो फॉलो फादर मतलब हमें अभी रिश्ता जो अपने रिश्ते के कारण चिंता होती है, मेरा बेटा दुखी है, मेरा पति स्वभाव ऐसा है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, तो देह के संबंध में आते फौरन परिस्थिति में फंस जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, अपना अव्यक्त स्वरूप रखो, अव्यक्त कॉन्शियसनेस, स्थिति को ऐसा बनाओ, और ये आज्ञा है बाबा की। तो अगर अवज्ञा की, बाबा ने आज्ञा क्या दी कि साकार धरती के आकर्षण वाली स्टेज में नहीं आओ, अगर इसमें आकर्षित होके आए तो ऐसा ही है जैसे कि मर्यादा की लकीर को उल्लंघन किया, और उल्लंघन किया अवज्ञा की, तो मैं आज्ञाकारी बाबा का सपूत बच्चा हूं। तो हम सचमुच देखें तो थ्रू आउट द डे कितनी बारी बीच में दूसरी गाड़ियां हमारे बाबा और हमारे बीच में आ जाती हैं। ना केवल गाड़ियां आ जाती हैं, परंतु जो बाबा को हम देख करके चल सके वो दृश्य ही गुम हो जाता है, क्योंकि वो जो बीच वाले हैं संबंधी, उन तरफ ही बुद्धि भटक रही है, चिंताएं परेशानी। तो ये क्या है, ये हम अवज्ञा करके अपने लिए दो दरवाजे दुख के खोल देते हैं। जैसे बाबा ने कहा ये प्रदर्शनी मुक्ति और जीवन मुक्ति दो गेट खोलती है, हम श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा के साथ संबंध जोड़ के उस याद में रहते हैं, फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस करते हैं, तो बंधन और बोझ खत्म होता है। और जब ये स्टेज से न्यारे होते हैं, अवज्ञा कर लेते हैं, तो क्या होता है, दो दरवाजे खोल देते हैं। एक तो परेशानी प्रॉब्लम्स, दूसरा प्रायश्चित पश्चाताप। परेशानियां फिर बाहर से आएंगी, पश्चाताप अंदर से आएगा, तो दुख और अशांति। तो जितना जितना पश्चाताप अंदर कॉन्शियस बाइट कर रही है, उतना उतना हम पास्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि पश्चाताप किस चीज का, दे अभिमानवश की गई पास्ट में रॉन्ग चीज। फ्यूचर में आगे बढ़ने के बजाय, गाड़ी को फॉलो करने के बजाय डिस्कनेक्ट भी हुए और दूसरी गलियों में चले गए, और अगर दूसरी गलियों में चले गए तो फॉलो कैसे करेंगे, भटक गए, यानी फिर हमको चिंता भी है परेशानी भी है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट स्टेज है कि हम बार बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करें। परंतु फॉलो जो हमको करना है वो सिर्फ निराकारी वतन तक नहीं करना है, फॉलो कहां तक करना है, सतयुगी साकारी वतन तक। निराकारी वतन में तो बाबा सबको लेके जाएंगे, परंतु कोई स्वमान से जाएंगे, कोई पश्चाताप करके जाएंगे। तो अंतर क्या हुआ, देह अभिमान और देही अभिमानी। तो देह अभिमानी जो है वो रिजल्ट उसका फिर अहंकार, देह भान देह अभिमान में बदल जाता, दे अभिमान फिर दे अहंकार में बदल जाता, और अहंकार आते ही विकारों का द्वार खुल जाता है, अवगुणों का दरवाजा खुल जाता है। अहम भाव में वहम भी होगा, दूसरे का अपमान भी करेंगे, कर्मों के हिसाब किताब का बंधन ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। बाकी विकारी कर्म जो हैं वो मोटे हैं। यह आत्मा अपने आप से ही अहंकार करती है, और बाबा ने जो फाइनल जो बताया, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्टेज जिस पर हम, और वो निराकारी स्टेज फिर से इस शरीर में रहते हुए शरीर को ट्रस्टी होके यूज करते हुए, ग्रस्ती नहीं ट्रस्टी। और अगर ग्रस्ती है, प्रभु शरीर की ग्रस्ती है, प्रवृत्ति है भी सही, तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर के पवित्र वृत्ति से फिर चेक करो कि कहाँ बंधन है अथवा बोझ है, कौन सी चीज खींचती है। तो बाबा साक्षी दृष्टा, बाबा को साथी बना के साक्षी दृष्टा होकर के सब कुछ देखा, जितना परोपकार किया इतना प्राप्ति सब कुछ होते भी क्रेडिट नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं। लक्ष्य बड़ा ऊंचा रखा, प्राप्ति का नशा बहुत रहा, परंतु बैलेंस किस बात का रहा, निस्वार्थ होकर कार्य किया, कर्तव्य बड़ी जिम्मेवारी से किया, परंतु उसका रिवॉर्ड नहीं लिया। जिसको बाबा ने कहा अपने लिए कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो, त्याग और तपस्या। तो साकार को फॉलो करना, निराकार की श्रीमत चाबी क्या है, श्रीमत है चाबी, परंतु लगाने का तरीका है साकार बाबा के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करना, शिक्षाओं को आज्ञाकारी बन करके चलना। और उसमें जितना जितना फिर ये तीनों स्टेजेस हैं, बॉडीलेसनेस यानी मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के शरीर को जिस विधि से कर चलाना चाहूं, दृष्टि किस रूहानियत से देखूं, प्रेम से देखूं, क्षमा भाव से देखूं, गुणग्राही दृष्टि से देखूं, तो मालिक और डिटैचमेंट, विदेही तो मैं ट्रस्टी हूं और मालिक हूं, जितना यूज करें। जैसे समझदार, बाबा ने कहा जो समझदार मालिक होता है वो मकान को अथवा जिस भी चीज को यूज करता है समझ से यूज करता है, तो हमको भी शरीर का हम मालिक भी हैं, तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को किस तरीके से यूज करते हैं। और हम सत्व प्रधान शरीर बना रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आत्मा को सत्व प्रधान बना रहे हैं, इसलिए मनमना भाव, मन को शुद्ध संकल्पों में यूज करना है। बुद्धि को दिव्य बना रहे इसलिए बुद्धि योग लगाना है। तो बाबा बार बार चेकिंग, बच्चे खाना खाते समय मैं बाबा को याद करता हूँ, देखता हूँ कितना मेरे याद रही, फिर ऑनेस्टी, भूल गए, भूल तो नहीं गया। तो जैसे बाबा ने ऑनेस्टी से पुरुषार्थ किया, सच्चाई से पुरुषार्थ किया, अपनी चेकिंग बार बार करते रहे, तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिकली देह से विदेह, देह भान अलग होता चला गया, सोल कॉन्शियस स्थिति आ गई। तो विदेही अथवा विदेह सोल कॉन्शियस स्थिति से परे, और अव्यक्त जो है वो है एकदम तपस निराकारी स्वरूप और आकारी स्वरूप का कंबाइंड रूप, कल्याणकारी स्वरूप है, प्यार का सागर है, साक्षी दृष्ट है, टोटली डिटैच है। और फिर जैसे फरिश्ता करने के बाद कभी जताता नहीं मैंने क्या किया, न्यारा है, तो बाबा भी हम बच्चों को इसी प्रकार से इसी स्थिति में हम, तो अव्यक्त व्यक्तियों वाली हमारी कॉन्शियस ना हो, साकार खाली नहीं परंतु हमारी कॉन्शियस चेंज हो जावे। और व्यक्ति मांगता है, चाहता है, डिजायर है, अव्यक्त न्यारा है, इच्छा मात्र में विद्या है, संपूर्णता है, और कंबाइंड है शिव बाबा के साथ। तो ऐसे निराकारी स्थिति और आकारी स्वरूप, जब आकारी स्वरूप है तो सिर्फ लाइट की बॉडी है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, पर उसका साक्षात्कार होता है। तो बाबा फिर ऐसा हम बच्चों को, जैसे बाबा का साक्षात्कार बाबा ने कराया, अव्यक्त बाबा का भी बार बार साक्षात्कार करा करके बाबा ने साक्षात ब्राह्मण तैयार किए, मुखवंशावली भी तैयार किए, तो दृष्टि से भी तैयार किए, तो संकल्प से भी तैयार किए, तो उस स्टेज पर हम पहुंचते हैं, तो वो है मनसा सेवा। जैसे बाबा ने की, ऐसे हम त्याग तपस्या से भी सेवा करें, मनसा से भी सेवा करें, तब हमारे को जो बाबा को श्री कृष्ण गेट खोलेगा स्वर्ग का, तो हम भी उसी के साथ जाएंगे ना। फिर तो स्वर्ग के अधिकारी न केवल गेट तक पहुंचेंगे, परंतु सतयुगी राज के महलों में भी रहेंगे। इसको कहते हैं फॉलो फादर। ओम शांति।